તારીખ 12/7/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 201 અને 202 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 52
શ્રી સમયસર પરમાનુ નિર્જરાધિકાર ગાથા 201 બે ગાથા સાથે છે. ચાલ્યો છે ફરીને સંક્ષેપમાં લઈએ કે અહીં અજ્ઞાનમય ભાવથી રાગમાં પોતાપણાનો અનુભવ વર્તે છે એવો સૂક્ષ્મ પણ રાગમાં પોતાપણાનો અનુભવ તે જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી અને જે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ ન હોય એને નિર્જરા કેવી રીતે થાય? અથવા તો જે જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એ રાગના કોઈ એક કણમાં પણ પોતાનો અનુભવ કરતા નથી, તો રાગના વિષયમાં કે એક પરમાણુમાં પણ એ પોતાપણાનો અનુભવ કરે યા પોતાપણે એને દેખાય કે જણાય એવું બનતો નથી? આમ સ્પષ્ટ છે વિષય. લોકોમાં પણ એમ જ કહેવાય છે, કોઈ એમ કહે કે ભાઈ અમે મુસલમાનના ઘરે જમતા નથી, ન જમતો કાંઈ નહીં પણ એકાદ કોળિયો ખાઈ લ્યો તો હું વાંધો, જમો નહીં તમે. હા હા, જૈસે કે કોઈ કહેતે હૈ કે હમ મુસલમાન કે ઘર પે ખાના નહીં ખાતે, ખાના મત ખાઈએ લેકિન થોડી રસોઈ મેં સે થોડા ચખ લીજીએ ક્યા, હમને પૂરા ખાના નહીં ખાયા લેકિન થોડા ચખ લિયા થા, તો ભ્રષ્ટ હોને મેં કોઈ જ્યાદા કમ કા પ્રમાણ હૈ ઉસ પ્રમાણ સે ભ્રષ્ટ હોને કી ગિનતી કભી નહીં હોતી. વૈસે રાગ કમ હો પતલા હો સૂક્ષ્મ હો, બહોત કમ રાગ મેં ભી અલ્પ રાગ મેં ભી અપનત્વ ક્યા યા જ્યાદા રાગ મેં અપનત્વ ક્યા, સ્વરૂપ સે ભ્રષ્ટ હો ગયા. જીવ સ્વરૂપ સે ભ્રષ્ટ હોતા હૈ ઉસી કો હી એસા હોતા હૈ, ફિર વો ત્યાગી દિખે, મેને કમ રાગ વાલા દિખે, ત્યાગી હોકર કે કૈસા દિખે કે ઉનકો તો બહોત સે પ્રતિજ્ઞાએ હોતી હૈ પંચમાવ્રત આદિ કી, તો ઉનકો બહોત કમ રાગ દિખતા હૈ. અપનત્વ હોતા હૈ યા નહીં હોતા હૈ? અપનત્વ હોતા હૈ તો અપને સ્વરૂપ કો નહીં જાનતા હૈ. જ્ઞાન તો બહોત હૈ, આચાર્ય મહારાજ ને તો બાત દિયા હૈ, કિતના જ્ઞાન હૈ કે શ્રુત કેવલી જૈસા હૈ એસા લિખા હૈ. જૈસે શ્રુત કેવલી દેખો અંગ પૂર્વાદિ કા જ્ઞાન હો, રાગ મે એકત્વ કરતા હૈ વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ, વો સમ્યક દ્રષ્ટિ હૈ હી નહીં, ક્યોંકિ રાગ પર તત્વ હૈ, અનાત્મ તત્વ હૈ, ઉસમેં આત્મા આત્મા રૂપ અનુભવ હોના, સ્વયં કે રૂપ મે અનુભવ હોના, અપને રૂપ અનુભવ હોના, એ સ્વયં કા અજ્ઞાન કો પ્રસિદ્ધ કરતા હૈ, આત્મા કો જાનતા હી નહીં હૈ. ગાથા કા યે વિષય હૈ, યહાં તક ચલા હૈ કે એસા જીવ આત્મા કો નહીં જાનતા ઓર અનાત્મા કો નહીં જાનતા, ક્યોંકિ 316 પન્ના પે, ક્યોંકિ સ્વરૂપ સે સત્તા ઓર પર રૂપ સે અસત્તા એસે દોનો દ્વારા એક પદાર્થ કા નિશ્ચય હોતા હૈ. નિશ્ચય હોને મે અસ્તિત્વ કી મર્યાદા જો હૈ ઉસકો ગિનને મે આતી હૈ, કે આત્મા કી સત્તા મે અનાત્મા કી સત્તા નહીં હોતી, અનાત્મા કી સત્તા મે આત્મા કી સત્તા નહીં હોતી. ક્યોં ઇધર સત્તા કી બાત લી હૈ, કે સત્તા હૈ વો અવલંબન કા સ્થાન મે હૈ. સત્તા કહાં હૈ, જિસકા આધાર લિયા જાતા હૈ. કલ બાત ચલી થી તીન, એક આધાર બુદ્ધિ, એક સુખ બુદ્ધિ ઓર એકત્વ બુદ્ધિ, એ તીનો પ્રકાર કે પરિણામ મુખ્ય રૂપ છે. પર કે સાથ તીન પ્રકાર સે વર્તતા હૈ તો નિયમ સે માં મિથ્યાત્વ ઓર અજ્ઞાન હૈ હૈ ઓર હૈ. યહાં સત્તા કે બાત લિયા હૈ આચાર્ય મહારાજ. આત્મા કો અપની સત્તા કા અવલંબન હોના ચાહીએ, અપના અસ્તિત્વ સ્વભાવ જિસકી પર્યાય સત્તા હૈ વો કિતના હૈ કે અનંત હૈ. અપના અસ્તિત્વ ટિકાને કે લિયે, અપના અસ્તિત્વ રહેને કે લિયે કિસી કી અપેક્ષા નહીં, કિસી કી જરૂરત નહીં, કિસી કી મદદ નહીં. આત્મા અનાદિ અનંત, અપના અસ્તિત્વ અનંત અસ્તિત્વ શક્તિ કે કારણ રહેને વાલા હૈ, કભી ઇસકો કુછ ભી હોને વાલા નહીં હૈ. નાશ હોને કા સવાલ હી પેદા નહીં હોતા, ઓર અવ્યાબાધત્વ હોને સે બાધા હોને કા ભી સવાલ નહીં રહેતા. સબસે પહેલે સમ્યક દ્રષ્ટિ કો કમ સે કમ બહોત કમ ઉઘાડ હો, બહોત કમ જ્ઞાન હો તો પણ ઇતના તો જ્ઞાન હોઈ જાતા હૈ કે મેરી સત્તા અનંત હૈ, મેરી સત્તા અનાદિ અનંત હોને સે મુજે મેરા અસ્તિત્વ કે લિયે કુછ કરને કી જરૂરત નહીં હૈ. વિશ્વ મે મુજે કિસી અન્ય પદાર્થ કી અપેક્ષા નહીં હૈ. સબસે પહેલે આધાર બુદ્ધિ ચલી જાતી હૈ, इसलिए परावलंबन के कारण से, पराधीनता के कारण से उत्पन्न होने वाला दुख सम्यक दृष्टि को कभी नहीं होता. ये दुख बहुत है लेकिन परिणति हो गई है और आदत बन गई है इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है. लेकिन पराधीनता का दुख बहुत है, इतनी पराधीनता हमारी है, इतनी ज़्यादा पराधीनता है और जानते भी है कि ये संयोग है, अपनी इच्छा अनुकूल रहते नहीं, चले जाते हैं, देह खुद चले जाता है, देह से अलग होना पड़ता है, तो दूसरी चीज़ का तो क्या भरोसा. ये तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ा हुआ नहीं ऐसा पदार्थ तो बिल्कुल आगे पीछे हो ही रहा है, क्या भरोसा. इसलिए જીવ કો ઇસકા જો ભય હૈ તો હમેશા હમેશા સતાતા હૈ. ક્યા માલૂમ કભી ક્યા હોગા. યહાં ભગવાન કહેતે હૈ કે કુછ હોને વાલા હૈ હી નહીં ઓર તેરે મે કુછ હો હી સકતા નહીં. જો કુછ હોતા હૈ તો रहते, बाह्य पर सत्ता में होता है, तेरी सत्ता में कुछ होता ही नहीं, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सारी उपाधियां छूट जाती है, कोई उपाधि नहीं रहती है। कृपाणु देव ने 833 नंबर के पत्र में आत्मभावना को भाई है, उसमें पहला वचन में लिखा है, मैं सर्व से सर्वथा भिन्न हूं। कैसा हूं? सर्व पदार्थ से सर्वथा भिन्न हूं, एक प्रकार भी ऐसा नहीं है कि मैं अभिन्न हूं, सर्व से सर्वथा भिन्न हूं, और एक केवल असंग चैतन्य हूं, निर्लेप चैतन्य हूं। किसी के साथ मेरा लेपाईमान पड़ा होता फिर चिंता काहे की। सुगानी जी भी एक पत्र में लिखते हैं कि बाहर में अनुकूलताएं नहीं होने से मेरा भाव होने पर भी मैं सोनगढ़ गुरुदेव के चरण में नहीं पहुंच सकता हूं, ऐसा मेरा पुण्य योग नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की उपाधियों के बीच में रहना होता है, फिर भी परिणति जब अनंत शांति के पिंड के साथ रहती है तो फिर चिंता काहे की। मुझे कोई चिंता नहीं है, 70 लाख की आबादी में, कलकत्ता के इस जमाने में 70 लाख की आबादी होगी, अभी तो 1 करोड़ से भी बढ़ गई है, मैं अकेला सुखी हूं। जब ये चिट्ठी उन्होंने लिखी तब रहने के लिए मकान की व्यवस्था और मकान में रखने के लिए, कुटुंब को रखने के लिए कोई व्यवस्था अपने पास नहीं थी, होटल में ठहरने के, जब मकान का किराया का व्यवस्था नहीं हो तो होटल का तो पैसा हो ही नहीं सकता, तो कहने की जरूरत नहीं थी। तो कभी कोई धर्मशाला में ठहर जाते थे, कभी कोई सैनिटोरियम में ठहर जाते थे, लेकिन हर जगह तो संस्था का नियम रहता है। इतना दिन से ज्यादा कोई यात्री यहाँ ठहर सकेंगे नहीं, तो इसका मुनिम टाइम होने पर बोल देता है, बाबूजी आपका टाइम हो गया है, कल आपको ये कमरा खाली करना होगा। कोई बात नहीं, दूसरा सैनिटोरियम में चले जाते, दूसरी धर्मशाला में चले जाते, अपने भी एक मकान, एक फ्लैट से दूसरे मकान में जाते हैं तो यही धर्मशाला ही है, उसकी बदली होती है। लेकिन कोई अच्छे मकान में जाता है तो थोड़ा खुशी हो जाते हैं, चलो ये अधिक सुविधा है, अनुकूलताएं हैं, लेकिन ये कुछ आत्मा में तो कुछ आता नहीं। फिर भी वो सुखी थे, वहां तो कलकत्ता में तो करोड़पति अरबपति बहुत हैं, तो मैं सबसे सुखी हैं। यानी ऐसे मुफ्त में हो गए क्या? मुमुक्षुता आई तो ज्ञानी हुए ने, तो मुमुक्षुता में तो आए, ज्ञानी होने का कारण तो बना ले जी, तो आकुलता कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, मुमुक्षुता में आएंगे तो भी आकुलता कम हो जाएगी, कैसे भी परिस्थिति हो पूर्व कर्म अनुसार आकुलता कम होगी होगी, मुमुक्षुता में इतना तो फर्क पड़ता है। ये मुमुक्षुता है वो ज्ञानी होने का कारण है। हमारी कोई करुणता है, ट्रेजेडी है जिसको कहते हैं, वो है कि हम ज्ञानी को स्वीकारते हैं, ज्ञानी होने के कारण को नहीं स्वीकारते। क्या हमारे यहाँ थोड़ा विवाद चला है, तो कृपालु देव के 24 साल के बाद के वचन तो ज्ञान दर्शाते थे, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पहले के जो थे वो तो ज्ञान दर्शाते नहीं थे, लेकिन जो पहले थे वो ज्ञान दर्शाते कारणभूत थे, तब तो ज्ञान दिशा ही ने, और एक अच्छा हुआ कि गुरुदेव ने 17 साल पहले के इनके जो वचन है उस पर व्याख्यान किया, और किस हिसाब से व्याख्यान किया वो खोला कि मैंने सारी जिंदगी में बहुत से ग्रंथ पढ़े, बहुत से आगम और परमागम पढ़े, उसमें से मैंने कुछ क्रिम निकाला है। अब आयु कुछ शेष, आयु कुछ अल्प रही, ये प्रवचन हुए 78 में, 78 के साल में, और 81 में गुरुदेव का आयु पूर्ण हो गया। तो 2-3 साल पहले, 5 साल पहले से पता चल गया था, स्वास्थ्य कमजोर चलता था, कि भी उम्र भी हुई है और भरोसा नहीं है, 88 वर्ष हो गया है। तो अब जो आखिर के जो प्रवचन है वो मेरे जीवन में जो सारभूत बात है, 12 अंक का सार बोला है। ये प्रवचन करते हुए स्वद्रव का रक्षक त्वरा से हो, स्वद्रव का धारक त्वरा से हो, स्वद्रव का ग्राहक त्वरा से हो, ऐसा करके 10 वचन लिखा है। प्रवचन करते करते लिखा कि ये 12 अंक का सार है। बोले क्या बोले? 17 साल के पहले कृपालु देव के पास 12 अंक का सार होगा तब तो गुरुदेव बोले ने। हमारी बुद्धि कितनी? जो स्वानुभव पुरुष कहते हैं कि ये 12 अंक का सार है तो बात खत्म हो गई। तो ये कारण को तो हम नहीं स्वीकारे और कार्य को स्वीकारे, कितनी हमारी अल्प बुद्धि है कि कारण था तो कार्य हुआ, अगर ऐसा कारण नहीं होता तो कार्य भी नहीं होता। कार्य को हम पूजनीय माने, कारण का हम निषेध करें, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, विचार शक्ति में कोई हमारा ठिकाना ही नहीं है। तो प्रवचन 17 साल के पहले ऊपर पहले की उम्र में जो लिखा है उसको 12 अंग का सार कह करके जिन जिन गाथाओं के प्रवचन किया उस महास्थान उनको दे दिया। नियम सार की 50 गाथा, अव्यक्त का 6 बोल, जो क्रिम सर्व आगमों में से क्रिम थी तो उसमें क्रिम में इस क्रिम को मिलाया कि ये भी एक क्रिम है जो 17 साल के पहले उन्होंने बोला। तो कितनी गुरुदेव की नजर कैसी थी, कितनी सूक्ष्म थी, उसकी गिनती में क्या क्या चीज थी, वो हमारे लिए विचार करने लायक चीज है, विचारणीय चीज है। ये क्या क्या बात है, तत्व को वो पकड़ते हैं, तत्व कहाँ पड़ा है और क्यों आया ऐसा भाव। ये चीज आत्मा में से निकली है, राग में से नहीं निकली। आत्मा की सत्ता और अनात्म सत्ता को सम्यक दृष्टि अलग अलग कर देते हैं, एक नहीं करते हैं, ऐसे अलग अलग करते हैं। तो ऐसे आधारभूत वस्तु है, उनका अवलंबन लेना चाहिए, पर सत्ता का अवलंबन लेना नहीं चाहिए। ब्रैकेट में कहते हैं कि जिसे आत्मा का और राग का निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा का और आत्मा का दोनों का निश्चय होना चाहिए। जिसको आत्मा का और आत्मा का मैंने राग का, अनात्मा का मैंने राग का, वो हाइफन किया है, इसका मतलब है अनात्मा मैंने राग। जिसको राग का निश्चय हुआ है कि ये अनात्मा है, आत्मा की तो पर्याय है चारित्र गुण की, चारित्र गुण की पर्याय होने पर भी वो विकारी पर्याय अनात्म तत्व है, आत्म तत्व नहीं है। हमने खीर खाई, अच्छी बनी इसलिए थोड़ी ज्यादा खा ली, ज्यादा खाने से क्या होता है, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग प्रोड्यूसेस पॉइजन। परमाणु में क्या बन गया, पॉइजन बन गया अनाथ, वो शरीर का तत्व नहीं रहा, फिर वो शरीर का तत्व नहीं रहा, वो आगे नहीं चलेगा, शरीर को पोषण करने में वो काम में नहीं आएगा। क्या होगा फिर कि फॉरेन एलिमेंट है, शरीर उसको बाहर फेंकेगा, क्या बोलेंगे घंटा भर के बाद हमको तो वॉमिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा या हमको तो टट्टी लग जाएगी, शरीर उसको बाहर फेंकेगा, उसको शरीर में रहने देगा नहीं। ऐसे आत्मा है वो अनात्मा पुर अनात्मा रूप राग का निषेध करता है, जो एकत्व करता है वो जहर को खाता है, दूसरा कुछ नहीं करता है, वो जहर को खाता है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं है। अगर वो बाहर नहीं निकला तो मर जाएगा, भीतर में खीर का हो गया पॉइजन, जहर होने के बाद अगर अंदर रह गया तो क्या होगा, तो बात खत्म हो जाएगी, वो बाहर निकालना ही पड़े, इसके सिवा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे राग है वो जहर है, उसके साथ एकत्व करने से आत्मा को भाव मरण होता है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो। जिसको अनात्मा का मैंने राग का निश्चय हुआ हो, उसको अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिपक्ष के हिसाब से उसकी अपेक्षा ज्ञान एक साथ ही होता है, एक का ज्ञान होवे और दूसरे का ज्ञान नहीं हो ऐसा कभी बनता नहीं। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता है वह जीव और अजीव को नहीं जानता। जो आत्मा और अनात्मा के भेद को नहीं जानता वो जीव और अजीव को नहीं जानता, और जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि ही नहीं। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या बताया, स्वरूप क्या बताया, को जीव अजीव को भिन्न भिन्न जाने वो सम्यक दृष्टि है, जीव अजीव को अभिन्न जाने वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए तो कल मोटी मोटी बात लिया था कि अपने यहाँ अपने जीवन में क्या होता है कि जो भी पूर्व प्रारब्ध अनुसार संयोग होते हैं, संयोग मिलते हैं, उसमें मेरापणा का भाव रहता है, शरीर मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, कुटुंब के जो भी सदस्य है वो मेरे हैं, इससे आगे जा करके जो संपत्ति है, मकान है, कपड़े हैं, इज्जत है, जो भी कुछ है वो मेरा है, अपनापन उसमें महसूस होता है, वो आत्मा में अपनापन अनुभव करने नहीं देगा। दो जगह अपनत्व नहीं होता, आत्मा में अपनत्व होवे उसी को कहीं भी राग में और राग के विषय में कहीं भी अपनत्व नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं, जागृत अवस्था में तो नहीं, लेकिन ज्ञानी को स्वप्न भी ऐसा नहीं आता कि ये चीज मेरी है, पर चीज मेरी है या राग मेरा है, ऐसा स्वप्न भी उसको नहीं आता। ये मोटी मोटी बात तो गुरुदेव की कृपा से हम लोग समझते हैं, समझने में कोई तकलीफ भी नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म बातें में गड़बड़ी चलती है, इसलिए थोड़ा चखना भी भ्रष्ट होने के बराबर है, ऐसी बात जो लिया है ऐसा थोड़ा बात करें कि ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है और अज्ञानी का उपयोग भी बाहर जाता है। ज्ञानी भी बाह्य प्रवृत्ति करते देखने में नजर आते हैं अज्ञानी की तरह, बराबर बिल्कुल उसी तरह, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, और संसार के जो भी पूर्व कर्म का प्रारब्ध है उसी अनुसार व्यवसाय कारोबार भी उनको होता है। राजा होता है तो राज का व्यवहार चलता है, सेठ होता है तो उनका सेठ के अनुकूल होता है, नौकर होता है तो नौकरी के अनुकूल होता है, मजदूर होता है तो मजदूरी भी करता है। सम्यक दृष्टि मजदूर का प्रारब्ध होता तो मजदूरी भी कर लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि होवे इसलिए ऐसा पुण्य का उदय होवे, ऐसा पाप का उदय नहीं होवे, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है। ये तो पूर्व कर्म के अधीन होता है, इसका कर्ता हर्ता ज्ञानी नहीं होता। तो उनका उपयोग जब बाहर जाता है और अज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है, दो एक सा लगता है किंतु दोनों एक सा है ही नहीं। कभी अज्ञानी का उपयोग ऐसा वैराग्य वाला दिखे बाहर जावे तो भी, और ज्ञानी का वैराग्य वाला नहीं भी दिखे तो क्या करेंगे, शांति में पड़ जाएंगे। ज्ञानी भी भक्ति करते हैं, ज्ञानी भी भक्ति करते हैं, ज्ञानी भी शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी उपयोग तो बाहर जाता है, और अज्ञानी भी शास्त्र पढ़ते हैं। पुराण क्यों लिखे गए, प्रथमानुयोग ऐसी बातों को समझाने के लिए लिखे गए हैं। तो पुराण का जो कथा है वो स्थूल बात है, लेकिन तत्व तो सूक्ष्म है उसमें। जैसे कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के देहांत के बाद 6 महीना तक इसके मुर्दा को कंधे पे रखकर घूमे फिरते रहे पागल की तरह। दिखने में कैसा लगे, क्या लगे, क्या राम रामचंद्र जी के राज्य में कोई वैद डॉक्टर नहीं होगा, क्या क्या वैद डॉक्टर को नहीं बुलाया होगा, क्या उन्होंने अपना अभिप्राय नहीं दिया होगा, क्या ये तो खत्म बात हो गई ये बात। अच्छे से अच्छा वैद डॉक्टर आता है ना, 17,000 साल उन्होंने राम राज्य किया है। कितना, रावण के साथ युद्ध करने के बाद वो अयोध्या में पधारे तो भरत जी ने बोला के आप संभालो आपकी गद्दी, मैंने तो आपकी चरण पादुका रख लिया था वहां, और मैं तो सेवा करता रहा राज की व्यवस्था, अब तो आप विराजो। तो 17,000 साल आयुष तो उन जमाने में बड़ा था। भगवान मुनि सुव्रतनाथ 20वें हमारे तीर्थंकर थे, उसी के समकालीन थे रामचंद्र जी। तो बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर तो राजाओं के पास होते ही है, उन्होंने तो बोल दिया होगा कि उसमें कुछ नहीं, तो मानते नहीं थे, नहीं तुम्हारा अभिप्राय तुम नहीं समझते उसमें, तभी भी विज्ञान तो मैं भी जानता हूँ, वो सब बहुत कुशल थे, संसार की सब विद्या में वो कुशल थे। 72 महीने सबकी सब, कोई ऐसी विद्या नहीं थी वो नहीं जानते थे, ज्योतिष आदि सब प्रकार के, डॉक्टरी फॉक्टरी सब जाने, इंजीनियरिंग फंजीनियरिंग सब इसमें आ जाता है, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, उतने बहुत विद्या विद्याधर विद्या वाले थे। बोले कि नहीं तो गुजरे नहीं, 6 महीने तक छोड़ा नहीं मर्दे को। ये तो बात समझने के लिए निकाली है। राग भी और राग में तीव्र मंदता भी है, फिर भी एकत्व नहीं है। क्या समझना है, अपना पिन पॉइंट बात क्या है, कि राग ज्ञानी को होता है उतना ही नहीं, ज्ञानी को राग तीव्र भी होता है, फिर भी एकत्व वाला नहीं होता है। ये बात समझने की है, जो समझने की बात है वो वही है, क्यों कि हमको हमारा जो राग है उसका परिचय है, कि हमारा राग भी तीव्र होता है, हमारा राग भी मंद होता है, तो ये हमारा अनुभव की चीज है। हम राग की तीव्र मंदता को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए ज्ञानी को तीव्र राग होते हैं तो अपने को लगता है कि ऐसा क्यों, एक दफे तो हमारी श्रद्धा विचलित हो जाएगी, ज्ञानी होगा ही नहीं, ज्ञानी हो गए तो इतना तीव्र राग हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। भीतर में राग से एकत्व नहीं है, वहां मंद राग हो तो भी एकत्व नहीं और तीव्र राग हो तो भी एकत्व नहीं जी। नहीं ऐसा नहीं है, इसकी मर्यादा 6 महीने से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम मर्यादा 6 महीने की है। बिना एकत्व वाले राग के लंबाने की मर्यादा कितनी? 6 महीने से ज्यादा अधिक वो नहीं लंबाते, 6 महीने पहले पहले टूट जाता है। हाँ और ये पुराण पुरुषों की कथाएं लिखते हैं तो क्या ये महापुरुष के दोष दिखाने के लिए कथा लिखी क्या? ना 6 महीना नौ पढ़ था भाई, नहीं भी बोल हाँ टूक समय में था, लंबे काले था, यानी कोई शास्त्र में मर्यादा नहीं जोड़ पा रहे। अच्छा हम निर्विकल्प अनुभव पर इतना क्यों वजन देते हैं? प्रश्न ही निकला है तो विचार करने लायक थी। इनकी परिणति निर्विकल्प नहीं चलती है क्या इस वक्त? ज्ञान धारा तो चलती है, वो निर्विकल्प आत्मा आत्म परिणति है। मुझे तो इससे भी एक अधिक बात करनी है, चर्चा इसलिए निकाली है, आत्मधारा तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, वो अनंत गुणों की परिणति है। श्रद्धा तो पूरी की पूरी शुद्ध है क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और ज्ञान चारित्र पुरुषार्थ सुख शांति आदि जो अनेक गुण हैं वो अनंत गुण की सर्वगुणांश वो सम्यक होने से सभी गुण यथासंभव शुद्ध होकर के आत्मा रूप होकर के आत्मा के अवलंबन से ही परिणत हो रहा है। इनकी चर्चा करने में तो अपने को कोई कारण नहीं है क्योंकि वो कोई विवाद का विषय नहीं बन सकता, वहां कोई विवाद करने की अवकाश और गुंजाइश भी नहीं है। अब इनका उपयोग जो बार जाता है वो तो हमारी तरह जाता होगा ना, परिणति भले ही नहीं जाती है तो क्या नहीं का उपयोग में राग समेत कितनी भी तीव्रता हो फिर भी वो भिन्न ही भिन्न रहता है, वो एकत्व नहीं करता, न राग से एकत्व करता है न राग के विषय भूत अन्य पदार्थ से भी एकत्व करता है। तो शंका वहां पड़ती है, लेकिन जो अगर ज्ञानी की पहचान हो और एक दफे भी ज्ञानी की पहचान हो तो ज्ञानी बन जाएगा। लब्धमा तो सवाल ही नहीं क्योंकि उसकी तो दिशा ही अंतर्मुख है, लेकिन जिसकी दिशा बहिर्मुख है वहां भी एकत्व नहीं होता क्योंकि पर्याय तो एक है, लब्ध और उपयोग दो पर्याय तो है नहीं, तो एक समय की दो पर्याय, एक पर्याय के दो भाव है, दो भाग है, भाग नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बैंसर कहते हैं कि भाव कहें तो अच्छा रहेगा क्योंकि एक एक समय के पर्याय का दो भाग होता नहीं, लेकिन भाव वहां दो है तो भाव शब्द का प्रयोग करते थे, चर्चा नहीं करते तो दो भाव है वहां लब्ध और योग, लेकिन पर्याय एक अखंड पर्याय है, एक अखंड पर्याय में दो भाव है इसलिए दूसरा भाव में एकत्व को प्राप्त नहीं होता है। अगर वो बात समझ में आ जाए तो ज्ञानी का ज्ञानत्व क्या है वो समझ में आ जाए। तो वो कैसे परिणमन कर रहे हैं उसकी दशा से वो पहचाने जाते हैं। वो पहचाने जाते हैं तो वहां से अपने को कैसे वो कार्य करना वो भी समझ में आ जाता है। प्रैक्टिकल देखने से प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। ऐसी बात है, मात में तो थियरी आती है लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञानी हो और उसका परिचय से पहचान हो तो पहचान करने वाला क्रमशः ज्ञानी हो ही जाता है। ये इसका फल है और उसका निर्माण हो ही जाता है, ये गारंटेड बात है। इसलिए ऐसा पुराण लिखे गए हैं। पुराण लिखने के पीछे यही अभिप्राय है कि इधर जो तत्व है उसको पहचानो समझो तो तुम्हारा भी निबेड़ा आ जाएगा। ऐसी बात है, तो कोई रामचंद्र जी के दोष दिखाने के लिए बात नहीं कही। भरत बाहुबली की जो लड़ाई है वो लड़ाई दिखाने के लिए बात नहीं की। उसी काल में उनकी दशा कैसी रही वो दिखाने के लिए वो बात कही है। तो वो अपने स्वतः ज्ञान आचरण अनंत गुण के परिणाम में से च्युत हुए नहीं। तो कितनी शक्ति है इस मोक्ष मार्ग के परिणाम में, कितनी ताकत है कि ऐसे उदय के झंझावात आते हैं, ऐसे आते हैं तूफान होता है बड़ा, यानी हिलते नहीं, जहां है वहां ही रहते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं। बाहर में दिखे कि हिल गए हैं, भीतर में हिले नहीं। और ऐसा संसार में भी बनता है। संसार में एक बच्चा होता है, इसके लिए धाव माता रखते कि नहीं रखते, बड़े बड़े लोग रखते हैं, तो इनकी जो सगी माँ है वो कभी थप्पड़ भी मार दे उसको, तुमने माटी खा ली, माटी खाता है तू, दो तीन साल का बच्चा है माटी खा लेता है, थप्पड़ मार दिए तो आंखें वाखें निकालती है बराबर, तो वो आंख देख करके रोने लग जावे। और धाव माता है उतना प्रेम से उसको लालन पालन करे, इतना प्रेम से करे कि कोई अनजान आदमी आवे तो उसको ये लगे कि ये इनकी सगी माँ है, ये तो और मान हो गई ऐसा लगे। लेकिन अंतर में फर्क पड़ता नहीं, दोनों में सगी माँ को पराया दिखता नहीं और धाव माता को अपना ये लड़का दिखता क्यों? कि श्रद्धा ज्ञान में फर्क नहीं पड़ सकता। आचरण कैसा भी उल्टा सुलटा किया जाए तो भी श्रद्धा ज्ञान में तो फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ सकता भी नहीं। अगर वो फर्क करना चाहे तो कर सकता है क्या? वो माँ उसको पराया बना सकती है क्या मारने के बावजूद भी, और ये प्रेम करने के बावजूद भी उसमें अपनत्व कर सकती है, करना चाहे तो भी नहीं कर सका है। ऐसा ज्ञानी से दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसका परिणमन दूसरा हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में तुम देखो। पत्र है बहुत सुंदर है, एक पोस्टकार्ड लिखा है तो बोलोगे दो सौ बहत्तर नंबर का पत्र है। प्रश्न भी पूछा है, उत्तर भी दिया है। हम लोग तत्व ज्ञान के अभ्यासी हैं, थोड़ा विचार करने जैसी बात है। जो महत पुरुष का चाहे जैसा आचरण, कैसा लिखा है, चाहे जैसा आचरण भी वंदन योग्य ही है। क्या सत्पुरुष को वंदन करना उतनी बात नहीं, वो चाहे जैसा इसका आचरण हो वो वंदन योग्य ही है, जैसा लिखा है। जो महत्पुरुष का चाहे जैसा आचरण भी वंदन योग्य ही है, ऐसा महात्मा प्राप्त होने पर, इसका संयोग होने पर, निसंदेह पड़े, निसंदेह रूप से न ज वर्त सके, शंका हो जाए उसमें, निसंदेहता रहे ही नहीं, ऐसी कोई इसकी वर्तना दिखने में आवे, शंका हो ही जावे, इस प्रकार से वो वर्तते हो ज्ञानी, तो मुमुक्षु जीव को कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, प्रश्न उठाया है। फिर मुमुक्षु जीव को कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, यह बात समझने योग्य है। स्पष्ट कर पूरा कर दिया, इतना ही लिखा है, सवा दो लीटी लिखी है, देखिए क्या बात गर्भित पड़ी है। कि ऐसी कोई ऐसा कोई प्रसंग है, जैसे रामचंद्र जी का हमने दृष्टांत दे दिया, रामचंद्र जी के ऐसे बहुत प्रसंग है, कि सीता जी का वियोग जब जंगल में होता है, रावण ले जाता है, तब भी बहुत रोते हैं, रोने लग जाते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, और पागल की तरह पेड़ को पत्थर को पूछते हैं, मेरी सीता को देखी कहीं, कहाँ चली, मिलती नहीं। आज कोई आदमी अपनी पत्नी के लिए रोने लगे तो भी अच्छा नहीं दिखा जाता, कि क्या पागल हो गया है अपनी पत्नी के पीछे, इतना कितना राग है। क्षायक सम्यक दृष्टि है, अगर क्षायक नहीं होते तो विद्वान लोग तो आरोप लगा देते कि क्षोभ सम पड़ गया होगा, फिर ले लेंगे, ले लिया होगा बाद में, मोक्ष तो पधारे उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्षोभ सम होगा तो इस वक्त गिर गए होंगे, लेकिन वो आजन्म क्षायक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए वो शंका का भी वहां गुंजाइश नहीं है। तो इतना तीव्र राग और द्वेष, द्वेष तीव्र है, ये रोना है वो द्वेष के परिणाम है, लेकिन राग के कारण वो द्वेष हुआ है, राग का स्थान द्वेष ने ले लिया, उस वक्त भी वो जो है जैसे थे वैसे थे। अगर इनका भीतरी स्वरूप उसी वक्त भी पहचानने में आए तो मुमुक्षु को इसके प्रति वंदना हुए बिना रहे नहीं, ये कहने का अभिप्राय है। ओहो, बाहर में ऐसा और भीतर में ऐसा, अपना तो हृदय, अपना तो मस्तक है, वो तो नतमस्तक हो जाता है, ऐसा पुरुषार्थी भी होते हैं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान में इतनी जबरदस्त पकड़ होती है कि हिलते नहीं है। ये गुरुदेव दृष्टांत बहुत बढ़िया देते थे कि 15 दिन महीने का बछड़ा होता है, गाय का, गैया का लोई, फ्रेश ब्लड होता है ना उसमें, तो इतना कूदता है, उतना कूदता है, सारे दिन कूदता ही रहता है, एक मेड़ भी जमीन पर पांव नहीं रखता है, चारों पैर से कूदता रहता है, तो देखने वाला बोलता है कि बहुत ताकत वाला है, क्या बोलता है, कितनी ताकत है, थकता ही नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ताकत किसकी, बछड़े की या खूंटे की, प्रश्न पूछते थे कि सारे दिन वो कूदता है फिर भी खूंटा हिलता नहीं है, तो तुमको कूदने वाले की ताकत दिखती है, खूंटा की नहीं दिखती है, हैं? हाँ, गुरुदेव तो बहुत विचक्षण थे ने, तो ऐसे ऐसे दृष्टांत निकालते थे, ऐसे ऐसे दृष्टांत निकालते थे वो, तो देखो तुमको राग द्वेष नजर आता है लेकिन भीतर में खूंटा पड़ा है और वो हिलता नहीं है, उसकी ताकत कितनी, गुस्सा करता है उसकी ताकत है या शांत रह सकता है उसकी ताकत है, ताकत किसकी जबरदस्त है, गुस्से वाला कमजोर है, कमजोर को गुस्सा बहुत, क्या कहते हैं हमारे यहाँ, कमजोर को गुस्सा बहुत होता है, ताकत वाला तो गुस्सा नहीं करता। तो उस तरह से इसका भीतरी स्वरूप देखने में आए तो उन्होंने उत्तर तो पहले दे दिया, प्रश्न तो रख दिया का विचार करना, लेकिन उत्तर पहले दे दिया है, प्रश्न में ही रखा है उत्तर, कि जो महत्पुरुष के चाहे जैसा आचरण भी वंदन योग्य ही है अगर पहचान है तो। नहीं पहचान है तो शंका उठे बिना रहेगी नहीं, शंका हो जाएगी तो भक्ति के परिणाम रहने वाले नहीं है, भक्ति के हो जाएगी, ये नियम से बात है। तो ये पुराण इसलिए लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि पुरुषों के पुराण क्यों लिखे, तीर्थंकरों के पुराण तो लिखते, लेकिन सम्यक दृष्टियों के भी क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं कि उनकी भीतरी जो दशा है उसकी पहचान कराने का आचार्य महाराज का अभिप्राय है, इसलिए वो लिखी गई बात है। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वो जीव अजीव को भी नहीं जानता, और जो जीव अजीव को भी नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कभी होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि मैंने जीव अजीव को भिन्न भिन्न जानने वाला, राग और आत्मा को भिन्न भिन्न जानने वाला। प्रश्न ये बहुत आते हैं, इस वक्त भी आत्म जागृति के लिए एक प्रश्न आया है, सम्यक दृष्टि का बाह्य लक्षण कौन सा है, क्या आत्म जागृति में स्पष्टीकरण दें, ऐसा करते हैं। अभी थोड़ा प्रश्न बढ़ रहा है तो सम्यक दृष्टि का चतुर्थ गुण स्थान वाले का कोई बाह्य लक्षण नहीं होता, एक भी बाह्य लक्षण नहीं है, व्रत नहीं, पचकाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई है, उतना ही नहीं। ये श्रेणिक राजा के लिए तो ऐसा लिखा है एक पत्र में कि एक दफे भी नमस्कार मंत्र बोलने का नियम जिसको नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि दूसरे भाव में निर्वाण चले जाएंगे, एकावतारी पुरुष होते हैं। वो क्षायिक सम्यक दर्शन वाला प्रश्न चला है ना, क्षायिक सम्यक दर्शन इस काल में है कि नहीं है, तो ऐसा लिखा है। तो सम्यक तो चीज क्या है उसको तो समझो, उसको तो पहचानो, ऐसा कहने का अभिप्राय। इसके बिना सम्यक दृष्टि पहचाना जाएगा नहीं, और सबसे कोई पहली क्षति रही है तो इस बात की रही है, सबसे पहली क्षति रही हो तो उस बात की रही है। अनंत काल में सर्वज्ञ मिले हैं लेकिन सम्यक दर्शन को नहीं पहचाना उस वक्त, सर्वज्ञ बोल करके भक्ति किया कि हमारे सर्वज्ञ है, हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सम्यक दर्शन उसका क्या है वो नहीं पहचाना। तो सर्वज्ञपना तो पहचाना ही नहीं। जो प्रगट अग्नि को नहीं देख सकता वो चकमक के पत्थर में रही हुई अग्नि को कैसे देखेगा। जो आत्मत्व है वो तो शक्ति रूप है, पत्थर में अग्नि शक्ति रूप है, व्यक्ति रूप नहीं है, और जो ज्वाला चलती है उसकी बाहर वो तो प्रगट अग्नि है, प्रगट नहीं है, उसको पहचान के पहचान करने के लिए हम कोशिश करें तो हमारी दृष्टि तो उतनी स्थूल है कि जो प्रगट है उसको तो हम समझे नहीं, और अप्रगट को समझने के लिए कोशिश करें कैसे, तो कैसे सफलता कैसे हो सकती है उसमें बताइए। बाह्य नहीं होते हैं लेकिन अवस्था तो प्रगट है, आत्मा की तो अवस्था में प्रगट नहीं, वो तो शक्ति रूप तत्व है, सूक्ष्म है। अभी चर्चा चल रही है अपनी अनुभूति वाली, तो ज्ञान सामान्य को तो पकड़ आता नहीं क्या फरियाद है। आपने कल बोला कि निराकार ज्ञान समझ में आता है, ज्ञानाकार ज्ञान वेदन रूप ज्ञान तो पकड़ने में आता नहीं, वो भी प्रकट पर्याय है। तो इससे भी सूक्ष्म जो है नायक स्वभाव, वो कहां से समझ में आएगा, कैसे ज्ञान में आ जाएगा? ज्ञान में आएगा कैसे? नहीं आ सकता। तो इसे भीतर में जाना पड़ता है। तो इतनी गहरी चीज है कि गहराई में जावे तो पता लगे। इसलिए सबसे ये बात क्यों लिखा, समवर अधिकार क्यों लिखा? ये शास्त्र जो है समयसार है, वो अज्ञानियों को सामने रख करके लिखा गया शास्त्र है, ज्ञानी के लिए समयसार नहीं लिखा है, अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए लिखा है। ये आचार्य महाराज ने स्पष्टीकरण दे दिया है 38 गाथा में, और निर्जरा होती है ज्ञानियों को। क्यों समर अधिकार लिखा? कि निर्जरा तत्व सम्यक दृष्टि में होता है, तुम पहचानो सम्यक दृष्टि को। ये तो अपने बीच में से शुरू किया, पहली गाथा से बहुत जबरदस्त धमाका किया दिया, कर दिया कुंकुदाचार्य देव ने, कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के, ऐसा करके निर्जरा अधिकार यहां से चालू किया है। मंद कषाई के पक्ष वाले तो सहन ही नहीं कर सके, समयसार पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो तो ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? कि समयसार पढ़े, पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं, समयसार पढ़ने के लिए पात्रता अवश्य चाहिए, और उत्कृष्ट पात्र को सामने रख करके समयसार लिखा है। इसलिए पात्रता का कोई प्रकरण सारा समयसार में नहीं आया, क्योंकि आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद आचार्य महाराज ने सामने उत्कृष्ट पात्र जीव ले लिया है, जो समयसार सुनने को आया है, इनके लिए लिखा है। कि अब तो उत्कृष्ट पात्र तो हो चुका है, अब तो ज्ञानी बन जाए, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। तो अज्ञानी मिट करके ज्ञानी हो जाए, ठीक इसी व्यू पॉइंट को लक्ष्य में रख करके, अपने हृदय में धारण करके अभिप्राय में सारा समय सार लिखा गया है। उसमें निर्जरा के मरना तो तकलीफ हो जाए, ऐसे कई बातें हैं कि तकलीफ हो जाए, सहन नहीं हुए, ऐसी बात लिखी है। तो जो जीव को और अजीव को नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं। इसलिए रागी जीव ज्ञान का अभाव के कारण से सम्यक दृष्टि होता नहीं। जो राग से एकत्व करता है, उसको ज्ञान का ही अभाव है, उसको ज्ञान का अनुभव नहीं, ज्ञान में जो वेदन है उसको वो जानता नहीं, स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है, इसका अनुभव वो आत्मा का अनुभव है, इसलिए वो उसके पास ज्ञान है ही नहीं। भावार्थ यही यहां राग शब्द से अज्ञानमय राग द्वेष मोह कहने में आए हैं। राग मैंने विकारी भाव, विभाव भाव, कैसे? अज्ञानमय, अज्ञान पूर्वक, एकत्व पूर्वक होने वाले जो भी विभाव परिणाम है, उसी को यहां एक शब्द में राग ऐसा बोला है। वहां अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से होने वाले रागादिक समझना चाहिए। यहाँ अज्ञानमय मतलब क्या है? कि मिथ्यात्व भी है, अनंतानुबंधी भी है, ऐसी जो दशा पहले गुण स्थान में होती है, ऐसा रागादिक की यहाँ बात चली है। मिथ्यात्व बिना जो चारित्र मोह के उदय से राग होता है, यह यहाँ पर लेना नहीं, स्पष्टीकरण दिया है जयचंद जी पंडित जी, जो 150 साल पहले जयपुर में हुए थे, वो भी ज्ञानी थे, उन्होंने ये समयसार का भावार्थ लिखा है। पर ये भावार्थ यूं का यूं रखने का गुरुदेव ने निर्णय किया था पढ़ करके, फिर उनको अनुवाद करना है, लेकिन भावार्थ जयचंद जी का जैसा है और अनुवाद भी जयचंद जी का जैसा है वैसा का वैसा रखना है, उसमें कोई फेरफार करना नहीं है। वो जब अनुवाद चलता था तब गुरुदेव की एक आज्ञा थी। इसलिए मिथ्यात्व बिना जो चारित्र मोह का उदय है, उदय में जो राग होता है ज्ञानी को, वो उधर यहाँ इसकी बात ये प्रकरण यहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि वगैरह को चारित्र मोह के उदय संबंधित राग है वो ज्ञान सहित है वगैरह। मैंने क्या पंचम गुण स्थान छठे गुण स्थान जो बुद्धिपूर्वक राग की प्रवृत्ति होती है शुभ की अशुभ की, वो चारित्र मोह के उदय संबंधित राग होते हैं, लेकिन वो ज्ञान सहित होते हैं। और ज्ञान सहित होते हैं इसका मतलब यह है कि मैं ज्ञानमय हूँ, ये शुभाशुभ राग है वो मैं नहीं हूँ, अपनी सत्ता भिन्न अनुभव करते हैं, राग की सत्ता को पर सत्ता जान करके भिन्न अनुभव करते हैं, ऐसा ज्ञान को यहाँ ज्ञान कहने में आया है। वह राग को सम्यक दृष्टि कर्मोदय से होने वाला रोग जानते हैं, क्या जानते हैं, राग को रोग जानते हैं। ये दृष्टांत बहुत अच्छा है। कोई दुबला आदमी होता है, जैसे अपने विजय भाई है, अभी सोजन आ जाए तो मुंह अच्छा दिखने लगे, अच्छा तो बहुत अच्छा शरीर हो गया, क्या वजन भी बढ़ गया दिखे, लेकिन ये पानी का भाग है, ये शरीर का चर्बी का भाग नहीं होता, कभी पानी से भी ऐसा होता है, तो ये शरीर की तंदुरुस्ती नहीं है, शरीर का रोग है। ऐसे अच्छा राग होने से कोई अच्छापन मान ले तो वो रोग को अच्छा मानता है, रोग का अच्छा मन मानने वाला रोग को निकालने का कभी प्रयत्न करने वाला नहीं है, ये तो अच्छी चीज है उसका रोग मिटने वाला। इसलिए राग को सम्यक दृष्टि रोग जानते हैं, चारित्र मोह का है तो भी उसको रोग जानते हैं, उसको आत्मा का जानते हैं नहीं है। इसलिए वो शरीर की अवस्था है, सोजन है वो शरीर की अवस्था है, फिर भी रखने लायक नहीं है। वैसे राग कितना भी कैसा भी हो, शुद्धात्मा का राग भी हो या तीर्थंकर देव का राग भी हो, राग है सो रोग है, उसको रोग जानते हैं और उनको मिटाने को ही चाहते हैं, रखने को कोई चाहते नहीं, मिटाने को ही चाहते हैं। उस रोग प्रति उसको राग नहीं, रोग के प्रति राग के प्रति राग नहीं। अनंतानंदी का राग का लक्षण क्या है, राग का राग होना, राग का ममत्व होना, यही मिथ्यात्व है, यही अनंतानुबंधि है। राग का राग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या कि राग का निषेध होना चाहिए, लेकिन हम मुमुक्षु हैं, पूजा भक्ति का तो स्वाध्याय का तो राग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राग का पोषण करने का कहीं भी उपदेश नहीं है। किस भूमिका में कैसे राग होते हैं उसका ज्ञान करवाया है, लेकिन करने का उपदेश कहीं भी दिया नहीं है। निषेध करना चाहिए, अगर ज्ञानी होना हो तो अपने राग का निषेध आएगा तो उसका अभाव होकर के ज्ञान दशा की प्राप्ति होगी, लेकिन अनुमोदन आ जाएगा तो ये राग का राग मिथ्यात्व की पुष्टि कर देगा, मिथ्यात्व दृढ़ हो जाएगा, दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा, चारित्र मोह मंद हो जाएगा और दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा। और पुनः सम्यक दृष्टि को राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है ऐसा जो कहा है, इसका कारण इस प्रकार से है कि सम्यक दृष्टि को अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, होता है लेकिन बहुत गौणता है, और जो शुभराग होता है उसको भी जरा भी भला समझते नहीं। थोड़ा तो भला है ना, अपनी भूमिका का तो है ना, इसलिए तो होना चाहिए ना, वो बात है नहीं। इसके प्रति लेश मात्र वो राग करते नहीं। राग होता है लेकिन राग के प्रति लेश मात्र भी राग नहीं है। इसलिए पहले राग का ममत्व छूटता है, राग का राग छूटता है, बाद में राग छूटता है। कोई सीधा राग को छोड़ना चाहे त्याग करके, तो ऐसा कभी राग किसी का छूटता नहीं है। पहले राग का ममत्व छोड़ो, ये इसका क्रम है। बिना क्रम आगे जाओगे वो क्रम से अक्रम से काम होने वाला नहीं है। इसलिए निश्चय से तो उसको राग का स्वामित्व ही नहीं, इसलिए उसको लेश मात्र राग सम्यक दृष्टि को नहीं है। फिर से थोड़ा लेंगे इस बात को, पीछे वाली बात।